मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 19 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत भी करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं नित्यानंद जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और हितेश्री पटेल जो राजकोट गुजरात से हैं। तो नित्यानंद और हितेश्री, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिन नजदीक आते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं दिन नजदीक आते जा रहे हैं, तो वो कौन से दिन? गर्मी के दिन नहीं, वो दिन जो क्लासेस के समय हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करेंगे, वो दिन नजदीक आते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह मैंने उन स्टूडेंट्स को जो क्लासेस में आने वाले हैं कुछ अपनी तरफ से संदेश कह लीजिए, मैसेज कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, निर्देश दिए थे और मुझे पूरा यकीन है कि स्टूडेंट उनको फॉलो कर रहे होंगे। मित्रों, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि प्लीज जो भी बातें मैं कहता हूं आप सबसे, हो सकता है कि अभी आपको वो उतनी महत्वपूर्ण न लगे, उतनी वजनदार न लगे। आप शायद ये सोचें कि ये सब तो लोग कहते ही रहते हैं, हम बचपन से ही सुनते आए हैं। बिल्कुल, बचपन से ही सुनते आए हैं और जो लोग कहते हैं वो गलत नहीं कह रहे थे। लेकिन मैं जो दबाव देकर के आपसे कह रहा हूं वो सिर्फ इसलिए कि ठीक है, आप कहते थे, मुझे नहीं मालूम कि उसमें से आप कितना करते थे कितना नहीं करते थे, लेकिन मित्रों, उसके परिणाम चाहे जो भी रहे हों, एक बार आप मुझ पर विश्वास कीजिए और करके देखिए, करके देखिए। थोड़े ही दिनों की बात है, कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना है और इसके लिए आपको अलग से करना भी क्या है, क्योंकि मनोविज्ञान के लिए अलग से कोई समय नहीं देना पड़ता है। केवल अपने अंदर की बिखरी हुई चीजों को ही तो व्यवस्थित करना पड़ता है। कोई नई चीज आपको नहीं लाना है, कोई नई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी है, कोई इसके लिए वक्त नहीं लगाना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई मेहनत नहीं करनी है, बस अपने अंदर की चीजों को थोड़ा सा दुरुस्त करना है, जिसे मैं मनोविज्ञान कहता हूं। दोस्तों, अपने को खाली कीजिए। खाली कीजिए का मतलब है कि हाँ ठीक है, हमें कुछ भी नहीं आता है, आपको आता है। आप अगर सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता है तो इस भ्रम में मत रहिएगा या भयभीत मत रहिएगा कि कहीं मेरे अंदर जो कुछ भी है या जो कुछ भी मुझे आता है मैं उसे कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा। नहीं, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बल्कि सच पूछिए तो आप अपने को और एनरिच करने के लिए, आप अपने को और ज्ञानी बनाने के लिए तैयार कर रहे होंगे। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा कि मुझे कुछ नहीं आता, तो आप देखेंगे कि उस वैक्यूम में इतनी ताकत आ गई है कि अब जो कुछ भी आपके चारों तरफ घटित हो रहा है वो बहुत तेजी से आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो आपका ये जो वैक्यूम है, जो खालीपन है, ये भरना शुरू होगा। और जब भरना शुरू होता है तो इसे ही हम कहते हैं एनरिच होना, समृद्ध होना। और मित्रों, ऐसा होगा ही, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो 15 दिन के आप यहां गुजारेंगे, जिन 15 दिनों के लिए आप यहां आ रहे हैं, और आप में से बहुत से ऐसे हैं जो लंबे वक्त से इन 15 दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका भरपूर उपयोग करके यहां से जाएं। और ऐसा नहीं है कि वो उपयोग केवल यहां 15 दिन के लिए होगा, बल्कि आप इतनी सारी चीजें लेकर के जाएं जिसका स्वाद आप ताउम्र ले सकें और जिंदगी भर उसका उपयोग कर सकें। यानी कि आपकी थैली में ऐसे शाश्वत सिक्के भर जाएं कि जिंदगी भर आप उन सिक्कों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के बेहतरी के लिए कर सकें। और जहां तक सिविल सर्विस का सवाल है मित्रों, उसके लिए तो ये क्लासेस हैं ही। तो मित्रों, इस थोड़े से उद्बोधन के बाद अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। दोस्तों, आज मैं मुख्य विषय के तहत इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें आपसे करूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी न्यूज को देख लेते हैं। जहां तक कल के रेडियो न्यूज की बात है तो उसमें अलग से कुछ नहीं है, लेकिन इस बीच में यानी कि 2-3 दिनों में कुछ अच्छी घटनाएं घटी हैं, जो भी कह लीजिए अच्छी बुरी सामान्य घटनाएं, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक घटना के रूप में आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो बहने वाली नदी है कावेरी, उसके जल को लेकर के दोनों के बीच में बहुत लंबा जल विवाद है, आजादी से पहले का जल विवाद है और इसके बारे में अखबारों में आपने पढ़ा भी होगा तो मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। उसको लेकर के एक टिप्पणी की है, हमारे लिए वो टिप्पणी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी उन्होंने की कि ये जो नदियां होती हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इस पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं है, किसी एक व्यक्ति का, मतलब इस तरह की उनकी टिप्पणी है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, तो क्योंकि नदियां जो हैं वो किसी एक राज्य में से निकलती हैं और कई राज्यों से बहती हुई कहीं जाकर के वो मिल जाती हैं, तो अब जहां से निकली हैं वह राज्य उस पर अपना दावा करे, या जहां जहां से बह रही हैं वो सारे राज्य अपना अपना दावा करें, या उनमें से कोई एक राज्य अपना दावा करे, या जहां वो नदी जाकर के गिर जाती है समुद्र में, विलीन हो जाती है, वो अपना दावा करे, कौन दावा करेगा? और ये अंतर्राष्ट्रीय मामला भी है, ये केवल राज्यों का ही मामला नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है। तो उन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बड़ी संवेदनशील टिप्पणी है और बड़ी प्यारी टिप्पणी भी है, और सच पूछे तो बहुत ही न्याययुक्त टिप्पणी भी है। मित्रों, मैंने तीन शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता दोस्तों कि आप इसी टिप्पणी पर कुछ लिखने की कोशिश करें, 400-500 शब्द लिख करके देखें कि जो नदियां हैं किसी एक राज्य की मलकियत नहीं है, इस पर ही लिखें, सोचें, और लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप रिपीटेशन से बचिए। आप बताइए कि कैसे वो एक राज्य की संपत्ति नहीं है, क्यों नहीं है। देखिए, मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, उत्तर लिखने का एक क्लू दे रहा हूं कि आप अपने दिमाग में से ये प्रश्न कीजिए कि क्यों नहीं है मलकियत, फिर आप उसको जस्टिफाई करने के लिए या उसके पक्ष में तर्क जुटाइए कि ये इसलिए नहीं है। देखिए कि आप कितने पॉइंट सोच पाते हैं, और उन पॉइंट्स को सोचने के बाद फिर उनको ज्वाइंट कीजिए, फिर वीविंग शुरू कीजिए। जैसे कि सूत इकट्ठा हो जाने के बाद एक चूल्हा कपड़ा बुनना शुरू करता है, पहले वो कपड़ा बुनता है, कपड़ा बुनने के बाद डिजाइन उसी समय डाल देता है, फिर उसमें रंग भरता है, उसको रंग देता है, या उन रंगीन धागे हैं तो उनके आधार पर एक बहुत अच्छे डिजाइन और कलरफुल कपड़ा तैयार करता है। कुछ उसी तरह का बिंब अपने दिमाग में लाइए और लिखने की कोशिश कीजिए। मित्रों, आपको बहुत मजा आएगा और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। जो दूसरी खबर है दोस्तों, वो भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, चुनाव सुधार से वो खबर जुड़ी हुई है, और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक डिसीजन दिया है, उसमें कहा है कि ये जितने भी चुनाव लड़ने वाले हमारे राजनेता हैं उनको चाहिए कि जब वो नामांकन पत्र भरते हैं तो कुछ जानकारियां वो और दें। उसको इनलार्ज किया है, संपत्ति की जानकारी वो लेते थे कि आपकी कितनी संपत्ति है, लेकिन इस बीच में देखा गया कि वो अपनी संपत्ति का तो ब्यौरा दे देते थे, लेकिन बेटे हैं, दूसरे रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, या उन पर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी संपत्ति की बहुत डिटेल जानकारी नहीं दी जाती थी। तो इस बीच में पाया गया कि दो दो चार चार पांच पांच साल के दौरान कुछ राजनेता ऐसे हुए जिनकी संपत्ति में कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया है, और जब आप उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इजाफा कहां से हुआ है, ये पैसा कहां से आया है, तो समझ में नहीं आएगा। मतलब जब इस तरह की याचिका दायर की गई कुछ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, और अब उन्होंने कहा है कि नहीं, अब जो भी राजनेता चुनाव लड़ेंगे उन्हें अपना, अपनी पत्नी का और अपने ऊपर जितने भी डिपेंडेंट लोग हैं उन सब का पैन नंबर देना होगा, इनकम के बारे में बताना होगा कि वो कितनी उनकी इनकम है, कितना उन्होंने टैक्स भरा है, उनके पास चल संपत्ति कितनी है, उनके पास अचल संपत्ति कितनी है, इन सब की जानकारी देनी होगी, और उन्हें कितना उनके ऊपर लायबिलिटीज है यानी कि दूसरों का कितना कर्ज चुकाना है, इन सब की जानकारी देनी होगी, और साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब अभी उनके पास किन किन सोर्सेस से, किन किन स्रोतों से पैसा आया है। मित्रों, मुझे लगता है कि चुनाव सुधार की दिशा में उठाया गया ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत सही कदम है, बहुत यथार्थवादी कदम है। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तीसरी खबर आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस बीच में ईरान के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनके साथ कुछ समझौते हुए हैं, और चाबहार बंदरगाह का नाम आपने सुना होगा, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हमारे इधर की पूरी जो राजनीति है उसके केंद्र में अभी ये बंदरगाह है, जो भारत के ये कह लीजिए कि स्थिति को बहुत ज्यादा इस पूरे क्षेत्र में बदल देगा। तो इसको केंद्र में रख करके आप अखबारों में जो भी आपको टिप्पणियां पढ़ने को मिलेंगी तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, दो चार पॉइंट आप बस नोट कर लीजिएगा, वही आपके लिए सफिशियंट होगा। तो मित्रों ये कुछ खबरें थी और अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है इंटरव्यू। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं और एक बात मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा जो मैं लगभग हर साल कहता हूं और वह यह कि जो भी आप में से स्टूडेंट इस स्थिति में हैं कि वो यूपीएससी लोक सेवा आयोग के भवन जा सकते हैं, धौलपुर हाउस में है, जानते हैं उसका नाम है धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड पर है, कनॉट प्लेस से सटी हुई वो जगह है और बड़ी खूबसूरत जगह है। आप जाएंगे तो आपको उसके फुटपाथ दोनों साइड से पेड़ों से सघन दिखाई देंगे और आपको अच्छा लगेगा। वहां आप लोगों को विजिट करना चाहिए, धौलपुर हाउस को देखने के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए कि जो स्टूडेंट इंटरव्यू देकर के बाहर आ रहे हैं आप उनसे बातचीत कर सकें, उनसे पूछ सकें। देखिए, मैं आपको पहले से सतर्क कर देता हूं कि उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो आपसे बात करना ना चाहें, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम होगी। नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट आपको ऐसे ही मिलेंगे जो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो आपको बताएंगे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, आपके साथ सहयोग करेंगे। और मैं आप लोगों को विशेष रूप से यह भी कहना चाहूंगा कि उनसे केवल यह भर मत पूछिए कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया है, आपका इंटरव्यू कैसा बना। आप उनसे यह भी पूछिए कि आपने मेंस की तैयारी कैसे की थी, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस साल के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं या नेक्स्ट ईयर के प्री में बैठ रहे हैं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के प्री में बैठ रहे हैं, नॉट एट ऑल। आप अभी जाइए, अगर आपने मानस अपना बना लिया है, सोच लिया है आपने कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपको विजिट करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोज विजिट कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम एक दिन पूरा दिन, एक दिन की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर संभव हो तो पूरा दिन या हाफ डे में आपको कुछ लड़के मिल जाएंगे, दो तीन लड़कों से आप बात कर सके, स्टूडेंट से बात कर सकेंगे। पूरा दिन लगाएंगे तो आप उसकी संख्या दुगनी हो जाएगी। पूरा दिन लगा लीजिए, इसको आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन ही मानिए। आप इसको इस रूप में मत समझिएगा कि मेरा एक दिन खराब हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बड़े हार्ड कोर टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं, एकदम सिविल सर्विस में लगे हुए हैं, उनको फिर इस तरह का समय व्यतीत करना, समय खराब करना लगता है। तो मित्रों, इसे समय खराब करना मत मानिएगा। इससे आप देखेंगे कि प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी के बारे में आपको कितने सारे फैक्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मित्रों, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, अब इंटरव्यू शुरू है तो अब आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में बीच बीच में मैं बहुत सी बातें करता रहा हूं, लेकिन एक बात जो मैं यहां स्पेशली आप सबसे कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को लेकर के, तो मैंने पाया कि उनमें लैकिंग है, वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अभी भी इंटरव्यू की चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आप सब देखिए, जानते ही हैं कि आपका जो पर्सनल बायोडाटा है उससे वो बातचीत शुरू करेंगे, आप जिस राज्य के हैं, जिस शहर के हैं, उस शहर के बारे में आपसे बातें पूछी जाएंगी, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने जो उसमें हॉबी लिखा है उस पर बातें होंगी, यदि आप किसी सर्विस में हैं तो डेफिनेटली उस पर भी कुछ प्रश्न कर लिए जाते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं शुरुआत के, ये बेसिकली परिचयात्मक हैं, इनका आपके इंटरव्यू से सीधे कोई लेना देना नहीं है। यह तो आपको नॉर्मल बनाने के लिए पूछा जाता है कि आप थोड़े से नॉर्मल हो जाएं, सामान्य हो जाएं, और आप देखेंगे कि इंटरव्यू में आप नॉर्मल हो चुके होंगे। अभी आपके दिमाग में जितना भी तनाव हो, जितना भी दबाव हो, जितना भी भय आशंका हो, होगी, होती ही है, हम लोगों के दिमाग में भी थी। और जब मैं अब बता रहा हूं कि वो आपको नॉर्मल कर देंगे तो यकीन भी नहीं होगा कि यार ऐसे कोई कैसे नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मित्रों ये होता है। जब आप वहां जाएंगे, बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि दो चार पांच मिनट में धीरे धीरे आप नॉर्मल हो चुके होंगे। इसके बाद सही मायने में इंटरव्यू शुरू होता है। मान करके चलिए कि अगर बुरा से बुरा भी इंटरव्यू होगा तो 15-20 मिनट से पहले आपको नहीं छोड़ेंगे, इतना न्याय वो अपने इंटरव्यू के साथ करते हैं। और आप इस इंटरव्यू पर पूरा भरोसा रखिए मित्रों, क्योंकि अविश्वास का माहौल हमारे कंट्री में ज्यादा है, लेकिन मान करके चलिए कि ये जो इंटरव्यूज हैं, यूपीएससी की ये जो परीक्षा है, इसमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अगर कोई करना ही चाहे तो फिर आप समझाना मुश्किल हो जाता है उनको, लेकिन आप पूरा यकीन मान करके चलिए कि आपका जो इंटरव्यू है उसके साथ पूरा का पूरा न्याय होगा, आपके इंटरव्यू के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। सारी चीजें आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि जब आप न्याय पर भरोसा करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना बेस्ट देने की सोचेंगे। जब हमारा भरोसा टूट जाता है तो फिर हम बेस्ट देने की भी नहीं सोचते कि अरे देंगे भी तो क्या होगा। इसके बाद मित्रों, बस आप धैर्य रखिए। सबसे बड़ा है कि आप अपना संतुलन कितना बनाए रख पाते हैं, सबसे बड़ी बात है। और नेक्स्ट पॉइंट्स और लास्ट पॉइंट्स में आपको जो कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि आपका जो इंटरव्यू है उसका जो आधार होगा, इनफैक्ट सच पूछिए तो करंट अफेयर्स होगा। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में देश में क्या हो रहा है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं। जब मैं घटनाओं की बात कर रहा हूं तो उसका संबंध केवल राजनीतिक घटनाओं से नहीं है, सभी क्षेत्रों की घटनाओं से है। पानी के बंटवारे की बात अभी मैंने कही, अभी फिर हम चुनाव सुधार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कि केवल इसी को लेकर के बात होगी, मतलब ये तो टॉपिक हो गया, इस टॉपिक को लेकर के कुछ भी बात की जा सकती है। पद्मावत फिल्म को लेकर के अभी देखिए कि इतनी सारी बातें हुई, इतना सारा डिस्कशन हुआ देश में, इतना तनाव का माहौल भी रहा, उस पर भी बात हो सकती है, किसी भी इशू को लेकर के बात हो सकती है। लेकिन जो करेंट इशू है उनको अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर सके तो उसे एक बड़ी कमजोरी माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 5-7 साल पहले इंजीनियरिंग की है, डॉक्टरी की है, आपने MBA किया हुआ है, उस पर कोई प्रश्न पूछा गया, आप उसके सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा निगेटिव इस रूप में नहीं लिया जाता है कि ठीक है 5-7 साल पहले आपने पढ़ा था किया था तो शायद आप अभी उतने बताने की स्थिति में नहीं है। हालांकि आपको बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप बता पाते हैं तभी आप प्रूफ कर पाते हैं कि आप अपनी चीजों के प्रति ईमानदार हैं, आप अपने को अपडेट रखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने 5-7 साल पहले पढ़ा था तो इस मायने में वो ये छूट दे देंगे कि साहब आदमी तो स्वाभाविक रूप से भूल जाता है, क्योंकि उनका संबंध पढ़ने से नहीं है, उनका संबंध रटने से नहीं है, उनका संबंध तो समझने से है, और समझने पर ही आधारित ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर करंट अफेयर्स के जवाब हम बहुत अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाता है। तो मित्रों, करंट अफेयर्स पर सबसे अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो मित्रों, जो भी नौजवान साथी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, उन सबको मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वह इंटरव्यू में जाएं, बहुत अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। मित्रों, हम सबकी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि वह आपको शक्ति दे, आत्मविश्वास प्रदान करे और अंततः सफल बनाए। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मैं आता हूं ईमेल पर। मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ है ऋषिराज सिंह जडेजा का, जो मुद्रा गुजरात से हैं। उन्होंने लिखा है कि गुजरात PCS के एग्जामिनेशन में फाइनली उनका वाणिज्य अधिकारी एवं हिसाबी अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हो गया है और उन्होंने इसका श्रेय इस AFEIS.com को भी थोड़ा सा दिया है। तो ऋषिराज, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस सफलता के लिए, अपनी पूरी एकेडमी की टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपनी ओर से भी और अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई। और यदि भविष्य में आप कुछ और बेहतर सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम सबकी शुभकामनाएं भी। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: सौरभ रावत, शिव प्रसाद दास उड़ीसा से, गौरव शर्मा धनबाद से, अरुण कुमार देवांगन बीरगांव छत्तीसगढ़ से, अमित इस्तियाक अहमद सिद्दकी, अनुराधा गुप्ता, रजनीकांत तिवारी छपरा बिहार से और शायंतन चौधरी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।